एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो है तो कुछ साल पुरानी, पर आज भी आप कह सकते हैं बहुत मायने रखती है। ये कहानी है 2008 के उस भयानक वित्तीय संकट की, वो भूचाल जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था।
और इस कहानी को समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं माइकल लुइस की बहुत ही मशहूर किताब द बिग शॉट इनसाइड द डूम्सडे मशीन का। ये किताब मतलब सिर्फ आंकड़ों और ग्राफ की बात नहीं करती, ये उन असली इंसानों की कहानी है जिन्होंने आने वाले तूफान को शायद बाकियों से पहले भांप लिया था।
बिल्कुल, और ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब पुरानी बात हो गई है ना, लेकिन ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे सिस्टम में जो छुपी हुई खामियां होती हैं, या लालच है, या फिर जानबूझकर अनदेखी करना, वो कैसे एक बड़े संकट को जन्म दे सकता है।
हाँ, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि हमें आज भी अपनी जो ये फाइनेंस की दुनिया है उस पर पैनी नजर रखने की जरूरत है।
क्या वैसी ही गलतियां आज फिर से दोहराई जा सकती हैं? मुझे लगता है यही सवाल इस किताब को आज भी अपना रेलेवेंट बनाता है।
सही कहा, ये उन मुट्ठी भर लोगों की कहानी है, कुछ थोड़े अजीब से, कुछ जिद्दी, कुछ बेहद होशियार, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ जाकर कहा कि भाई कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने अमेरिकी हाउसिंग मार्केट और उससे जुड़े, आप कह सकते हैं, गोरख धंधे के खिलाफ एक बहुत बड़ा दाव खेला था।
अच्छा, तो इस दिलचस्प कहानी को कहने वाले हैं माइकल लुइस। पहले जरा उनके बारे में थोड़ी बात कर लें, ये कौन है?
हाँ जरूर, माइकल लुइस अमेरिका के बहुत ही जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और लेखक हैं। उनकी खासियत यही है कि वो पैसे की जो ये उबाऊ और मुश्किल दुनिया होती है ना, उसको रोमांचक कहानियों में बदल देते हैं।
और सुना है वो खुद भी इस दुनिया का हिस्सा रहे हैं।
बिल्कुल, और यही कमाल की बात है, 80s के दशक में वो खुद वॉल स्ट्रीट की एक बहुत बड़ी कंपनी थी सैलमन ब्रदर्स, उसमें बॉन्ड बेचा करते थे, तो उन्हें अंदर की सारी बातें पता है, वहां का कल्चर कैसा है, तिकड़ में क्या चलती हैं, सब कुछ।
अच्छा,
उनका पहला ही बेस्ट सेलर था लायर्स पोकर, वो इसी अनुभव पर था और उसने उस समय के वॉल स्ट्रीट के लालच को एकदम बेनकाब कर दिया था।
तो मतलब वो अंदर के आदमी होते हुए भी बाहर वाले के नजर से देख पाते हैं, वो भीड़ के साथ नहीं बहते बल्कि सवाल उठाते हैं।
एग्जैक्टली, उनकी लिखने की कला ऐसी है जैसे उनकी दूसरी किताबें हैं मनी बॉल या द ब्लाइंड साइड, वैसे ही यहां भी मुश्किल फाइनेंस को एकदम इंसानी ड्रामा बना देते हैं जिसे कोई भी समझ सके, महसूस कर सके।
हाँ, वो फाइनेंस की भारी भरकम भाषा को आसान बना देते हैं। तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, द बिग शॉट। ये असल में है क्या, कहानी क्या है?
इसे आप 2008 के संकट की एक जासूसी कहानी समझ सकते हैं। कहानी उन चंद मुट्ठी भर लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने अमरीकी घरों के लोन बाजार के डूबने पर शर्त लगाई थी, मतलब उसे शॉर्ट किया था।
वो बाजार जिसके बारे में सब मानते थे कि ये तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, कभी गिर ही नहीं सकता।
हाँ बिल्कुल वही, किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये संकट कोई अचानक नहीं आया था, ये तो सिस्टम में फैली बेईमानी, जानबूझकर सच से मुंह मोड़ने और ऐसे गलत किस्म के फायदों, इंसेंटिव्स का नतीजा था जिसने बैंक से लेकर रेटिंग एजेंसी तक सबको गलत काम करने के लिए उकसाया।
अच्छा,
लुइस बताते हैं कि कैसे ये जो फैंसी नाम वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे ना, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी यानी MBS और कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन यानी CDO, कहने को तो ये जोखिम बांटने के लिए थे, पर असल में ये तबाही के टाइम बॉम्ब बन गए।
सोचिए, मतलब ये ऐसा था जैसे बहुत सारे छोटे छोटे खराब कर्जों को एक साथ पैक करके उन पर AAA यानी सबसे सुरक्षित का चमकीला लेबल लगा दिया और दुनिया भर में बेच दिया।
बिल्कुल, और इसमें रेटिंग एजेंसियां, बड़े बैंक्स, लोन देने वाली कंपनियां सब मिले हुए थे। किताब इसी मिलीभगत का पर्दाफाश करती है।
और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का सूखा विश्लेषण नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये उन किरदारों की कहानी भी है जिन्होंने इस खेल को समझा, कोई आंकड़ों में डूबकर समझा तो किसी ने सड़क पर घूमकर असलियत जानी। ये किताब वॉल स्ट्रीट के तौर तरीकों पर और पूरे सिस्टम पर एक तीखा सवाल है। लुइस ने इसे एक थ्रिलर की तरह लिखा है जो बताता है कि इस पैसे के खेल की असली कीमत आम इंसानों को चुकानी पड़ती है।
ठीक है, तो ये संकट शुरू कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें कहाँ थीं? कहानी हमें 80 के दशक में ले जाती है।
हाँ, जब सैलमन ब्रदर्स में ही लुइस रेनरी नाम के एक शख्स ने ये मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी बनाई थी। शुरू में ये एक अच्छा आइडिया था, हजारों होम लोन को मिलाकर एक बॉन्ड बनाना, ताकि लोन का जो जोखिम है वो किसी एक बैंक पर ना रहे बल्कि कई निवेशकों में बट जाए।
लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई?
गड़बड़ हुई 2000 के दशक में, तब ये आइडिया बिगड़ गया। अब मकसद जोखिम बांटना कम और इन बॉन्ड्स को बनाने और बेचने की फीस से पैसा कमाना ज्यादा हो गया था। घर खरीदने के लिए लोन लेना बहुत बहुत आसान हो गया था। सरकारी नीतियां भी थीं जो इससे बढ़ावा दे रही थीं।
और वॉल स्ट्रीट को इन एमबीएस की भूख थी?
हाँ, जबरदस्त भूख थी। और रेटिंग एजेंसियां, वो तो मतलब कचरे जैसे लोन से बने बॉन्ड को भी सोने जैसा बताकर AAA रेटिंग दे रही थीं।
अरे बाप रे।
और इस पागलपन का एक उदाहरण है मॉर्गन स्टेनली का ट्रेडर हॉवी हबलर। उसने शर्त लगाई थी कि ये सबप्राइम लोन सुरक्षित है और अकेले अपनी कंपनी को $9 अरब का चूना लगा दिया। ये दिखाता है कि बड़े बड़े दिग्गज भी कैसे आंखें मूंदे बैठे थे।
बाप रे, $9 अरब।
तो इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, डॉक्टर माइकल बरी। हाँ, डॉक्टर माइकल बरी, एक अजीब शख्सियत, एक आंख कांच की, सोशल स्किल थोड़ी कम, एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित, और पहले न्यूरोलॉजिस्ट थे, बाद में हेज फंड मैनेजर बन गए, साइन कैपिटल नाम से अपना फंड शुरू किया। वो किसी की सुनते नहीं थे, बस आंकड़ों पर भरोसा करते थे।
और उन्होंने किया क्या अलग?
जब सब वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स की बातों पे यकीन कर रहे थे, बरी ने बैठकर हजारों असली लोन के जो कागजात होते हैं ना, प्रोस्पेक्टस, वो पढ़े। उन्होंने देखा कि जिन लोन से ये सुरक्षित बॉन्ड बने थे वो असल में बहुत ही खराब क्वालिटी के थे।
जैसे?
जैसे बिना कमाई के सबूत के लोन दे दिए गए, बिना डाउन पेमेंट वाले लोन, एडजस्टेबल रेट वाले लोन जिनका ब्याज बाद में बहुत बढ़ जाता, मतलब चुकाना मुश्किल।
अच्छा।
उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये गुब्बारा फूटेगा। तब उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बड़े बैंकों जैसे गोल्डमैन सैक्स और ड्यूच बैंक को मनाया कि वो एक नई चीज बनाए, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS।
CDS ये क्या था?
इसे आप उन मॉर्गेज बॉन्ड्स के फेल होने पर मिलने वाली बीमा पॉलिसी समझ सकते हैं। बेरी ने ये पॉलिसियां खरीदी। अगर बॉन्ड डूबे तो बेरी को पैसा मिलेगा। ये पहली बार था कि किसी ने इतने बड़े पैमाने पर हाउसिंग मार्केट के गिरने पर दांव लगाया था।
तो बेरी ने ये सब आंकड़ों में देखा, लेकिन जमीन पर असलियत में क्या चल रहा था? यही तस्वीर में आते हैं स्टीव आइजमैन।
हाँ, स्टीव आइजमैन, फ्रंट पॉइंट पार्टनर्स नाम के हेज फंड के मैनेजर। थोड़े गुस्सेल, हमेशा शक करने वाले, और वॉल स्ट्रीट की ईमानदारी पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था।
उनकी कहानी क्या है?
उनकी आंखें तब खुली जब वो ड्यूश बैंक के एक ट्रेडर ग्रेग लिपमैन से मिले, जो खुद ये CDS बेच रहे थे। आइजमैन को शक हुआ। उन्होंने अपनी टीम को भेजा, जाओ जरा देखो कि ये लोन असली में है कैसे।
अच्छा, मतलब फील्ड पर भेजा।
हाँ बिल्कुल, टीम फ्लोरिडा गई, कैलिफोर्निया गई, और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। हर तरफ धोखाधड़ी, नकली कागजात, एक स्ट्रिपर जिसके नाम पर 5 घर थे और लोन थे, ऐसे लोगों को लोन मिल रहे थे जिनकी कोई तयशुदा कमाई नहीं थी।
अरे यार,
आइजमैन के लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं था, उन्हें गुस्सा आया कि कैसे पूरा सिस्टम लोगों को धोखा दे रहा है। उन्होंने समझा कि ये नैतिक खतरा, मॉरल हैजर्ड, कैसे काम कर रहा है। लोन देने वाले ब्रोकर से लेकर बैंक तक सब फटाफट अपना कमीशन बना रहे थे, और जोखिम वो किसी और के माथे मर रहे थे। वो इस कहानी के एक तरह से नैतिक प्रहरी बन गए।
तो एक तरफ बड़ी आंकड़ों में देख रहे थे, दूसरी तरफ आइजमैन जमीन पर, और इस सबके पीछे एक और बड़ी मशीन चल रही थी, CDO वाली।
हाँ, CDO यानी कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन। ये MBS से भी एक कदम आगे की चीज थी। सोचिए, बैंक MBS के सबसे खराब, सबसे जोखिम भरे हिस्से लेते थे, जिन्हें ट्रेंच कहते हैं, उन्हें फिर से पैक करते और एक नया बॉन्ड बना देते CDO।
मतलब कचरे से और कचरा बनाना,
कुछ वैसा ही। और हद तो तब हो गई जब सिंथेटिक CDO बने। ये तो असली बॉन्ड्स थे ही नहीं, ये बस CDO के फेल होने या न होने पर लगाए गए सट्टे थे। जैसे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगता है, बस वैसे ही।
बाप रे, और ये सब क्यों?
सिर्फ फीस कमाने के लिए, भारी भरकम फीस। इन सिंथेटिक CDOs ने एक नकली डिमांड पैदा की, जिससे हाउसिंग का गुब्बारा और तेजी से फूला।
और ये इतना जटिल क्यों बनाया गया था?
यही तो चालाकी थी। इन चीजों को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया कि कोई समझ ही ना पाए कि असली खतरा कितना बड़ा है। निवेशक, रेगुलेटर, शायद बैंक के बड़े बॉस भी अंधेरे में थे। लुइस इन्हें फाइनेंशियल परमाणु बम कहते हैं। ये जटिलता ही धोखाधड़ी का हथियार बन गई थी।
लेकिन कहानी में सिर्फ ये बड़े खिलाड़ी ही नहीं थे, एक छोटी सी टीम भी थी, कॉर्नवॉल कैपिटल।
हाँ, चार्ली लेडली और जेमी माय, दो नौजवान लड़के जिन्होंने कैलिफोर्निया में एक गैराज से काम शुरू किया था सिर्फ करीब $1,00,000 की पूंजी से।
अच्छा,
उन्होंने क्या किया? उनका फंडा था असममित दाव खोजना, मतलब ऐसी बाजी लगाना जहां जीतने पर फायदा बहुत ज्यादा हो और हारने पर नुकसान बहुत कम। उन्होंने भी इसी सबप्राइम मार्केट के खिलाफ दांव लगाया, सस्ते में लंबी अवधि के ऑप्शन खरीदे। उनकी मदद की बेन हॉकेट नाम के एक रिटायर हो चुके ट्रेडर ने।
इनकी कहानी क्या सिखाती है?
ये दिखाती है कि अगर आप दिमाग खुला रखें और सवाल पूछें तो बिना बड़े तामझाम के भी आप वो सच देख सकते हैं जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट नजरअंदाज कर रहे थे।
किताब में एक सीन का जिक्र है, लास वेगास कॉन्फ्रेंस।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण सीन है। वहाँ ये सारे मुख्य किरदार बरी, आइजमैन, कॉर्नवॉल वाले लगभग एक ही छत के नीचे मौजूद होते हैं। और माहौल कैसा है? हजारों बैंकर्स शैंपेन उड़ा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जबकि उनकी पूरी इंडस्ट्री कुछ ही महीनों में डूबने वाली थी। ये उस समय के सामूहिक भ्रम का, अंधेपन का प्रतीक है।
पर इन मुट्ठी भर लोगों के लिए जिन्होंने सच देख लिया था, उनके लिए इंतजार मुश्किल रहा होगा।
बहुत मुश्किल। 2006 और 2007 की शुरुआत में उनके विश्लेषण के बावजूद घर की कीमतें गिर नहीं रही थीं, बल्कि बढ़ रही थीं। उन्हें अपनी बीमा पॉलिसियों, CDS का प्रीमियम भरना पड़ रहा था जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। उनके निवेशक चिल्ला रहे थे, पैसा वापस मांग रहे थे।
ये दिखाता है कि बाजार आपकी उम्मीद से ज्यादा समय तक बेवकूफी कर सकता है।
हाँ बिल्कुल, और सच के साथ खड़े रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, दिमागी तौर पर भी और पैसों के मामले में भी। फिर 2007 में धीरे धीरे दरारें दिखने लगीं, लोन चुकाने में डिफॉल्ट बढ़ने लगे, न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल जैसी बड़ी सबप्राइम लोन कंपनियां डूब गईं।
और तब बैंकों ने क्या किया जिन्होंने CDS बेचे थे?
अब खेल का एक और घिनौना पहलू सामने आया। जिन बड़े बैंकों ने ये CDS बेचे थे उन्हें अब अरबों डॉलर चुकाने थे बरी और आइजमैन जैसों को, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने नुकसान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने खातों में इन CDS की कीमत गलत दिखाई ताकि उन्हें तुरंत भुगतान न करना पड़े। ये सिस्टम के भ्रष्टाचार का आप कह सकते हैं आखिरी सबूत था।
और फिर आया वो दिन 2008।
हाँ, पहले बेयर स्टर्न्स बैंक डूबा, फिर लेहमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया, और देखते देखते पूरी दुनिया की फिनेंशियल सिस्टम जाम हो गई। क्रेडिट मिलना बंद हो गया, बैंक्स एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे थे, हर तरफ दहशत फैल गई।
और नतीजा, जिन्होंने शॉर्ट किया था जैसे बरी, आइजमैन, कॉर्नवॉल,
उन्होंने बहुत पैसा कमाया, अरबों डॉलर, लेकिन किताब बताती है कि वो खुश नहीं थे, वो डरे हुए थे, निराश थे। उनकी जीत दुनिया की तबाही पर टिकी थी।
और आम लोगों का क्या हुआ?
लाखों लोगों ने घर खो दिए, नौकरियां चली गईं, सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से उन्हीं बैंकों को बचाया जिन्होंने ये संकट खड़ा किया था, और जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। लुइस का मानना है कि सिस्टम की जो असली बीमारियां हैं वो दूर नहीं हुई और एक और संकट का खतरा वो बना हुआ है।
तो इस पूरी कहानी से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? पहला तो शायद यही कि कैसे अच्छे इरादे से शुरू हुई चीजें जैसे वो MBS लालच और लापरवाही के कारण कितनी खतरनाक बन सकती हैं।
रेटिंग एजेंसियां जिन्हें सही रेटिंग देनी थी वो बैंकों से फीस लेकर गलत रेटिंग देती रहीं। रेगुलेटर जिनका काम निगरानी करना था वो या तो सोते रहे या बैंकों के प्रभाव में आ गए। ये रेगुलेटरी कैप्चर का क्लासिक केस था, जब देखने वाला ही इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए।
तीसरा सबक है भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत। वो बाहरी लोग बैरी, आइजमैन, कॉर्नवॉल,
हाँ, उनका बौद्धिक साहस, उन्होंने सबकी राय के खिलाफ जाकर सच ढूंढा। सफलता सिर्फ होशियारी से नहीं मिली बल्कि स्वतंत्र सोच और सबूतों पर टिके रहने से मिली।
चौथा और शायद सबसे अहम है नैतिक खतरा वाली बात, मॉरल हजार्ड।
हाँ, और सिस्टम का जोखिम, जब आपको पता हो कि फायदा आपका और नुकसान किसी और का होगा, जैसे सरकार या निवेशकों का, तो आप जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाएंगे ही। यही हुआ, पूरा सिस्टम एक जुआ घर बन गया था।
पांचवा, हमें याद रखना होगा कि फाइनेंस की यह जटिल दुनिया सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, हर आंकड़े के पीछे इंसान है।
बिल्कुल, घर खोने वाले परिवार, पेंशन गंवाने वाले बुजुर्ग, टैक्स देने वाले आम नागरिक, जब पैसों का खेल इंसानी कीमत को नजरअंदाज कर दे तो वो खतरनाक हो जाता है, अनैतिक हो जाता है।
और छठा सबक, जटिल का अक्सर धोखे का पर्दा होती है।
हाँ, चीजों को इतना मुश्किल बना दो कि कोई समझ ही ना पाए कि अंदर क्या गोलमाल चल रहा है, और ये जानबूझकर किया गया था।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जो शायद हमेशा याद रह जाएं। कुछ कोट्स या विचार?
हाँ बिल्कुल, जैसे लुईस का ये कहना कि वॉल स्ट्रीट का काम असल अर्थव्यवस्था की मदद करना था, लेकिन वो खुद ही एक सट्टेबाजी का अड्डा बन गया था। उसका अपने असली मकसद से कोई लेना देना ही नहीं रहा।
या ये तीखी बात कि असली समस्या लेहमन ब्रदर्स का डूबना नहीं था, बल्कि ये थी कि लेहमन जैसी कंपनियों को इतने सालों तक इतने खतरनाक तरीके से कामयाब होने ही क्यों दिया गया। ये सीधे सिस्टम की जड़ पर चोट है।
और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। लोग पैसे के मामले में समझदारी क्यों दिखाएंगे अगर बेवकूफी भरे फैसले लेकर भी अमीर बन सकते हो? ये पूरी इंसेंटिव व्यवस्था पर ही सवाल है।
साथ ही ये कटाक्ष की पूरा सिस्टम इस बात पर टिका था कि लोग अनजान बने रहना चाहते थे। ये जानबूझकर पैदा की गई जटिलता और हमारी अपनी उदासीनता दोनों पर टिप्पणी है।
और आखिर में वो रूपक कि वॉल स्ट्रीट ने एक राक्षस बनाया था और आखिर में वो राक्षस उन्हीं को खा गया, ये दिखाता है कि जब आप बिना सोचे समझे कुछ बनाते हैं तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, अनपेक्षित परिणाम।
तो सबसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें, खासकर जब पैसा शामिल हो। एक्सपर्ट्स की सुने लेकिन अपना दिमाग भी लगाएं, सवाल पूछें। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा जटिल लगे तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ है।
हाँ, और किसी भी सिस्टम को समझने के लिए, चाहे वो ऑफिस हो, राजनीति हो या कोई भी इंडस्ट्री, ये पूछना काम आता है, इस व्यवस्था से किसको फायदा हो रहा है। अगर आप समझ जाएं कि लोगों को किस बात के लिए इनाम मिल रहा है, तो आप उनके व्यवहार और सिस्टम के नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है।
एक और बात, खुद रिसर्च करने की अहमियत। असली समझ दूसरों की राय रटने से नहीं, खुद जांच पड़ताल करने से आती है। जैसे बर्नेला ने प्रॉस्पेक्टस पढ़े या आइजमैन की टीम ने जमीनी हकीकत देखी।
और हमें ग्रुप थिंक यानी भेड़चाल से बचना सीखना होगा। कैसे होशियार लोग भी जब एक झुंड में होते हैं तो बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसी जगह बनानी होगी जहां अलग राय रखने वालों को सुना जाए, जहां मान्यताओं को चुनौती दी जा सके। असहमति को प्रोत्साहन करना जरूरी है।
मेरे लिए इस किताब की सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये है कि संकट कितना साफ दिख रहा था, मतलब इन लोगों को दिख रहा था, फिर भी बड़े पैमाने पर उसकी अनदेखी हुई। ये दिखाता है कि सच अक्सर सामने होता है पर हम उसे देखना नहीं चाहते, खासकर अगर वो हमारे लिए असुविधाजनक हो।
और मेरे लिए शायद सबसे डराने वाली बात है जवाबदेही की कमी। जिन्होंने इतना बड़ा संकट खड़ा किया उन्हें कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उन्हें बचाया गया। और ये कि कैसे जटिलता को सच छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा सबक यही है, सिस्टम की बड़ी नाकामियां अचानक नहीं होती, वो सिस्टम की खामियों के चलते लोगों के छोटे छोटे स्वार्थी फैसलों का एक तार्किक नतीजा होती हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स की राय और बड़ी अपारदर्शी संस्थाओं पर हमेशा थोड़ा शक करना जरूरी है।
तो एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर आज भी हमारी दुनिया में वैसी ही जटिलता और गलत प्रोत्साहन मौजूद हैं, तो अगला बिग शॉट यानी अगला बड़ा संकट कहां पनप रहा होगा?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।